का 23वां श्लोक पढ़ेंगे। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। अनुवाद को दोहराइएगा। हे पुत्र, ओम कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे देवी देवताओं के बारे में और कृष्ण के बारे में। और कृष्ण भगवान इस विषय के ऊपर यहां क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले कि श्लोक में भगवान बता चुके हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वो कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, जो हमेशा मेरी पूजा उपासना में आराधना में लगे रहते हैं, श्रद्धा से मेरी सेवा करते हैं, उनके लिए जो भी कमी है मैं पूरी कर देता हूं और जो भी उनके पास है उसका संरक्षण करता हूं। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि जो उनके अनन्य भक्त हैं वो उन भक्तों की पूरी तरह से रक्षा करते हैं, जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरे कर देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए चिंता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन सभी लोग इस संसार में तो श्री कृष्ण के भक्त नहीं हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 5 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है कि 5 प्रकार के लोग उनकी उपासना करते हैं। कोई सीधे ढंग से करता है तो कोई टेढ़े ढंग से करता है, कोई सीधे सही ढंग से करता है तो कोई गलत ढंग से करता है। लेकिन जो सारी उपासना है वो कृष्ण के ऊपर, कृष्ण के चरण कमलों पर जाकर पहुंचती है। लेकिन सही तरीका होता है जैसे भगवान श्री कृष्ण ने इस पहले श्लोक में बताया था, अनन्यास चिंतयन्तो माम, कि हमेशा श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। माम, भगवान श्री कृष्ण शब्द प्रयोग करते हैं, माम, माम मतलब मैं, मतलब श्री कृष्ण जो कि बोल रहे हैं गीता का उपदेश। लेकिन अन्य सारे भक्त होते हैं तो सबसे पहले जो भक्त होते हैं वो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतमाश्रित भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसे संसार में हैं लोग, कम हो सकते हैं लेकिन हैं, जो हमेशा उनके दिव्य शक्ति का आश्रय लेते हैं। ऐसे लोगों को महात्मा कहते हैं, महान आत्मा, दैवीं प्रकृतिमाश्रिता, देवी दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। भजन्ते अनन्य मनसो, अनन्य मन से, अनन्य चित्त से भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं। और ये अच्छी तरह से जानते हैं, ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्, वो जानते हैं कि मैं सारे प्राणियों का मैं स्वामी हूं, मैं प्रभु हूं और मैं अव्यय हूं, मैं सच्चिदानंद विग्रह हूं। ये अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये हुए पहले श्रेणी के भक्त। दूसरे श्रेणी के भक्त हुए जो श्री कृष्ण की सेवा करते हैं लेकिन कोई स्वार्थ लेकर जाते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, चार प्रकार के लोग मेरे पास में आते हैं, मेरे शरण में आते हैं। वो कौन है? एक है आर्थी, अर्थात जो पीड़ित है, जो दुखी है, अपने दुख का निवारण करने कृष्ण के पास में आता है। और दूसरा है अर्थार्थी, जो कुछ भौतिक लाभ चाहता है, जो कुछ धन चाहता है, कोई शिक्षा चाहता है, कोई अपने व्यवसाय में प्रगति चाहता है, कोई अच्छा पति चाहता है तो कोई अच्छी पत्नी चाहते हैं, इस प्रकार से कृष्ण के पास जाते हैं अर्थार्थी। फिर जिज्ञासु, तो जिज्ञासु लोग होते हैं, देखें तो सही क्या है ये कृष्ण भावना, कैसे है, चलो देखते हैं, कृष्ण के मंदिर में जाके देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। और ज्ञानी, जो आध्यात्मिक स्तर पर स्थित होते हैं लेकिन शायद भक्ति के, शुद्ध भक्ति के स्तर में न स्थित हों, हो सकते हैं ये लोग योगी हो, ज्ञानी हो, ज्ञान मार्ग का में चल रहे हो। तो ये चार प्रकार के लोग जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के पास में आते हैं। लेकिन ये थोड़े निम्न श्रेणी के माने जाते हैं महात्मा के तुलना से। क्यों? क्योंकि महात्मा जो है वो भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करते हैं, अनन्य भाव से भगवान का भजन करते हैं, इसलिए उनके हृदय में कण मात्र भी कोई ऐसी कामना नहीं है भगवान की सेवा के अलावा। उनकी एकमात्र इच्छा हृदय में ये होती है कि कैसे मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करूं, मैं कैसे भगवान के लिए अच्छे से अच्छे सेवा करूं। और ऐसे भक्त जो है इनको भगवान शक्ति दे देते हैं, इनको विशेष शक्ति देते हैं जिससे वो अद्भुत से अद्भुत कार्य संपन्न कर सकते हैं। एक कहानी याद आती है, वो अकबर और बीरबल की। अकबर बीरबल का नाम तो आप सबने सुना होगा ने? तो एक बार ऐसे हुआ कि अकबर के एक दरबार में तानसेन, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार थे, वो गायन कर रहे थे। तो उस समय राजा अकबर ने सुना और कहा कि तानसेन, तुम इतना बढ़िया गाते हो कि शायद सारे दुनिया में तुमसे अच्छा कोई नहीं गाता होगा। तो तानसेन ने कहा कि ये हुजूर, ये ठीक बात नहीं है, एक व्यक्ति है जो मेरे से अच्छा गायन कर सकते हैं। वो कौन है? वो है मेरे गुरु हरिदास शास्त्री। हरिदास जी हैं और वो मेरे से अच्छा गा सकते हैं, मैं उनका शिष्य हूं, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। अच्छा, तो बुलाओ तो आपके गुरु को यहां पर। तो उस समय बीरबल वहां थे। तो बीरबल ने कहा कि हरिदास जी जो हैं ये ऐसे आपके पास नहीं आने वाले, आपको उनके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो वृंदावन में रहते हैं हरिदास जी, और वहां भजन के लिए वो बहुत ही मशहूर हैं, वहां उनका भजन चलते रहता है, इसलिए वो किसी के सामने झुकते नहीं हैं, केवल कृष्ण के सामने झुकते हैं वो, और कृष्ण के भक्तों के सामने। तो अकबर ने कहा ठीक है, तो मैं वहां चलता हूं। तो अकबर अपने सेना को लेकर वहां गए वृंदावन, और वृंदावन जाकर हरिदास से हरिदास का दर्शन किया, और हरिदास से कहने लगे कि आप कुछ भजन कीजिए, हम सुनना चाहते हैं, तानसेन ने आपके बारे में हमें बहुत बताया है। तो हरिदास ने कहा, मैं केवल कृष्ण के कहने पर भजन करता हूं, मैं संसार के किसी व्यक्ति के सुनने पर नहीं करता हूं, चाहे वो बादशाह हो कोई हो, मैं चिंता नहीं करता हूं। तो अकबर बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे वास्तव में, उन्होंने कहा ठीक है जैसी आपकी इच्छा, और वो बाहर गए। बाहर जाकर बीरबल ने एक तरकीब सोची, एक उपाय, क्या किया जाए। तानसेन बड़े चिंता में थे कि राजा के इन्होंने ऐसे गुस्सा कर दिया, गुस्सा तो नहीं हुए लेकिन फिर भी ऐसे उत्तर उन्होंने दे दिया है, अब क्या किया जाए। तो तानसेन ने कहा, तो बीरबल ने कहा कि तानसेन जी आप ऐसा कीजिए, आप अपने गुरु के पास में जाइए और भजन शुरू कीजिए, लेकिन बेसुरा आप गाइए, कुछ थोड़ा स्वर इधर उधर करके गाइए, और जब आपके गुरु देखेंगे या सुनेंगे कि उनका प्रिय शिष्य ऐसे बेसुरा गा रहा है तो उनको सहन नहीं हो पाएगा और वो खुद गाएंगे, और जब खुद गाएंगे तो हमारे बादशाह जो है बाहर बैठकर सुनेंगे। तो तानसेन ने वैसे ही किया, तानसेन अंदर गए और तानसेन ने राग भैरव गाना शुरू किया, लेकिन जानबूझकर एक दो तान इधर उधर की खींचकर गलत किया, और हरिदास बोलने लगे अरे रे रे रे, ये क्या कर दिया तानसेन तुमने, इतने साल से सब अच्छी से सीखा है, अचानक क्या हो गया तुम्हें, देखो राग भैरव ऐसे होता है। और फिर शुरू किया, और एक बार जो हरिदास ने शुरू किया तो ऐसे चलते गए जैसे सागर की लहरों के ऊपर अकबर ऊपर 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 गए, जैसे कि भाव विभोर होकर बिल्कुल हरिदास कृष्ण का भजन करने लगे राग भैरव में। और उधर बाहर बीरबल और अकबर सुन रहे हैं और वो भी भाव विभोर हो गए, खो गए बिल्कुल भजन की दुनिया में। बादशाह अकबर भूल गए कि वो कौन है, हिंदुस्तान के राजा हैं, वो सब भूल गए। और एक घंटा जब हो गया सब जाग गए, और जागकर बाहरी चित्त पर आ गए वापस, और फिर से एक अकबर दौड़कर अंदर गए हरिदास जी के पास में, उनको दंडवत प्रणाम किया कि कहा कि आपसे महान इस संसार में कोई नहीं है, और उन्होंने उनका आदर सत्कार किया और चले गए। जब लौट कर आए तो अकबर ने तानसेन से कहा, आपके गुरु तो बहुत ही अच्छा गाते हैं, लेकिन आप भी तो बहुत अच्छा गाते हो, ये क्या कारण है कि आपके गुरु की तरह नहीं गा सकते। तो उस समय बीरबल बोले, हुजूर इसके लिए एक कारण है। कारण क्या है कि तानसेन हिंदुस्तान के राजा के लिए गा रहा है और हरिदास वृंदावन के राजा के लिए गा रहा है, इसलिए जो मजा उनके संगीत में आएगा वो तानसेन के संगीत में नहीं आ सकता। हालांकि तानसेन इतने बढ़िया संगीतकार हैं, इतने अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन फिर भी वो आपके लिए गा रहे हैं, लेकिन ये हरिदास कृष्ण के लिए गा रहे हैं इसलिए इनके संगीत में इतना जादू है। तो उस समय अकबर समझ गए, तो अकबर चुप बैठ गए, क्योंकि आप जानते हैं बीरबल को अकबर को चुप कराने की पद्धति हमेशा होती थी। तो इस प्रकार से ये महात्मा लोग जो होते हैं केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उनके जीवन में और कोई भी इच्छा नहीं होती है और किसी की नहीं सुनते हैं, वो केवल कृष्ण की प्रेरणा, कृष्ण के भक्तों की सेवा, बस यही उनके हृदय में रहता है। लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं होते, कई लोग होते हैं जो स्वार्थी होते हैं, और हम जब भक्ति में पहले पहले आते हैं ये स्वार्थ पूरी तरह से मिट नहीं जाता है, धीरे 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 से मिट जाता है। इसलिए जब हम कृष्ण भक्ति के मार्ग में आते हैं तो हमें भी बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम जब भक्ति करते हैं तो हमारा निजी स्वार्थ हमारे भक्ति में नहीं लाना चाहिए। हम जब कोई भी सेवा करते हैं तो हमें पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए कि निष्काम भाव से हम सेवा करें, और अगर हमारे स्वार्थ के लिए हमें कोई अवसर प्राप्त भी हो जाए तो फिर भी उस अवसर का हमें फायदा नहीं उठाना चाहिए। इसलिए भक्त के लक्षण है, भक्त अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करता है। तो ये हो गए दो श्रेणी भक्तों के। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहां पर बता रहे हैं कि और एक श्रेणी है मेरे भक्तों के, ये अपि अन्य देवता भक्ता, ये भक्त जो हैं ये मेरी देव पूजा नहीं करते हैं, किनकी करते हैं, अन्य देवताओं की करते हैं। यजन्ते श्रद्धयान्विता, वो क्या वो भजन करते हैं श्रद्धा से, ते अपि माम कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम्। हालांकि वो देवताओं की पूजा करते हैं हे अर्जुन, लेकिन ये जान लो ये पूजा वास्तव में मेरे लिए है, लेकिन ये जो देवताओं के उपासक हैं इस बात को नहीं जानते हैं। और दूसरी बात, जिस ढंग से वो मेरी पूजा कर रहे हैं अविधि पूर्वकम, वो सही ढंग नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, कि एक ओर मेरे शुद्ध भक्त हैं और मेरे सकाम भक्त हैं, निष्काम भक्त और सकाम भक्त, वो मेरी ही उपासना करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, और दूसरी ओर देवताओं के भक्त हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो पूजा वास्तव में कृष्ण तक अंततः पहुंच जाती है। और इसके अलावा ये जो कृष्ण की पूजा है ये इनडायरेक्ट है, मतलब ये सही ढंग की सेवा नहीं है। कृष्ण की भक्ति अगर करनी है तो सीधे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए कृष्ण के भक्तों के माध्यम से, लेकिन देवताओं की पूजा करने से, देवताओं को प्रमुख मानकर उनकी सेवा करना, ये कृष्ण की उपासना है लेकिन सीधे तरह से नहीं है। यहां कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? अविधि पूर्वकम्। विधि के खिलाफ। सही विधि क्या है? सही विधि है अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः परुपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां। ये है सही विधि, हमेशा साक्षात श्री कृष्ण का ही स्मरण करना। भगवान ने ये नहीं कहा है कि हमेशा देवताओं का स्मरण करो। अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम्, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्यत्र संशयः। आठवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो अंतकाल में मेरा स्मरण करता है वो मेरे पास अवश्य लौट कर आता है। भगवान श्री कृष्ण ये नहीं बोलते कि तुम किसी की भी स्मरण करो, किसी भी देवी देवताओं की स्मरण करो और तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे। नहीं, भगवान कहते हैं अंतकाले च माम एव स्मरण, मेरा स्मरण होना चाहिए। मेरा मतलब कृष्ण जो बोल रहे हैं उनका स्मरण होना चाहिए। अगर कृष्ण बोल रहे हैं मेरा स्मरण करो, इसका मतलब कृष्ण का स्मरण करो। जब कृष्ण बोलते हैं कि मेरा स्मरण करो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंद्र चंद्र की सेवा करें। लेकिन ऐसे कई टीकाकार होते हैं जो इस प्रकार से कृष्ण की बातों को टेढ़ा कर देते हैं। तो कृष्ण भगवान बताते हैं कि ऐसे जो भक्त होते हैं देवताओं के, वो उनकी पूजा अर्चा करते हैं लेकिन वो थोड़े अज्ञानी हैं, उनका ज्ञान जो है वो अधूरा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो भी वो कर रहे हैं वो अच्छा है। कृष्ण भक्ति करने से इसकी तुलना नहीं कर सकते। कृष्ण भक्त तो सबसे ऊंचे स्तर पे हैं और सभी को कृष्ण भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर कोई कृष्ण भक्त नहीं है तो कम से कम उसको देवताओं की तो पूजा करनी चाहिए, कम से कम। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कह रहे हैं कि सभी को देवताओं की पूजा करनी चाहिए, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि किसी वजह से भी कोई कृष्ण के पास नहीं आ रहे हैं तो कम से कम देवताओं के पास करो। जैसे सरकार कभी कभी मदपान के लिए निषेध लगाते हैं, बंद कर देते हैं, प्रोहिबिशन, और फिर सरकार देखती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वैसे भी शराब पीते हैं, छुपे छुपे बनाते हैं, बेचते हैं, पीते हैं, तो सरकार क्या कहती है? ठीक है, ऐसे लोग जो बिल्कुल शराब के बिना जी नहीं सकते हैं उनके लिए हम विशेष दुकान बनाएंगे, और जिनको विशेष अनुमति परमिट दी जाती है केवल वही जाके एक कोटा खरीद सकते हैं शराब का, हफ्ते में एक बार दो बार जो भी है। अब सरकार ही उनको परमिट देती है, उनको अनुमति देती है कि आप शराब पियो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार चाहती है कि सब लोग शराब पिएं। कोई अगर कहे कि देखो सरकार का नियम है, सरकार ने कहा है कि शराब पियो, परमिट ले लो, तो सरकार की इच्छा है कि सभी को शराब पीना है, क्या ये सही होगा? नहीं। सही बात क्या है? सही बात यह है कि सरकार चाहती है कि कोई शराब नहीं पिए, लेकिन सरकार जानती है कि ऐसे व्यक्ति अवश्य होंगे जो कि शराब के बिना रह नहीं सकते हैं, इसीलिए वो परमिट देते हैं ऐसे लोगों के लिए। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, सभी को कृष्ण भक्त बनना चाहिए, लेकिन भगवान जानते हैं कि सभी लोग कृष्ण भक्त नहीं बनेंगे। कोई देवताओं की पूजा करेगा, कोई नास्तिक बनेंगे, कोई निराकार की उपासना करेंगे, तो नाना प्रकार के उपासक होते हैं, कोई खुद अपनी पूजा करेंगे, तो ऐसे पूजा करने वाले अनेक अनेक प्रकार के लोग होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा नहीं करनी है तो कम से कम देवताओं की तो करो। क्यों कहते हैं ऐसा भगवान? क्योंकि देवताओं की उपासना करने से कम किसी के भी तो हम कोई हमारा अधिष्ठाता तो है, किसी के एक आदेश के अनुसार तो हम काम कर रहे हैं। अगर हम पूरी तरह से स्वतंत्र रहेंगे तो ये अच्छा नहीं है। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो उस पूजा के नियम के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, या बिताना चाहिए उनको। कामस्तस्य हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्य नियतः स्वया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके हृदय में भौतिक इच्छाओं का विकार है, ऐसे लोग भगवान श्री कृष्ण की वो देवताओं की पूजा करने के लिए जाते हैं। और तम तम नियममास्थाय प्रकृत्य नियतः स्वया, और जो भी देवी देवताओं की उपासना के लिए सब नियम होते हैं उनका सही ढंग से पालन करते हैं। मतलब उनकी जीवन में कोई तो अथॉरिटी होता है, किसी का आदेश तो पालन करते हैं, थोड़ा बहुत तो संयम होता है उनके जीवन में कि हर शुक्रवार को ये करना है, हर मंगलवार ये मंदिर में जाना है, फिर हर बुधवार को हमें ये उपवास रखना है। कुछ न कुछ तो धार्मिक कार्य करते हैं, भले वो सबसे ऊंचा स्तर न हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि कम से कम इनकी करो पूजा। तो ये देवता है कौन? ये देवता भी आप और हम जैसे हैं। अभी आप सोचेंगे, अरे वाह, हम भी देवता के बराबर हैं। बराबर किस दृष्टि से हैं? क्योंकि देवता भी जीवात्मा है और हम भी जीवात्मा है, दोनों जीवात्मा है। लेकिन फर्क ये होता है कि देवता जो है बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत ज्यादा शक्ति प्रदान की होती है उनको भगवान ने, क्योंकि उनको सारे ब्रह्मांड का कार्य सौंपा गया है, ब्रह्मांड को संभालने का कार्य उनको सौंपा दिया गया है भगवान ने। इसीलिए उनको विशेष अद्भुत शक्ति प्रदान की है भगवान ने, और ऐसी शक्ति उनके पास है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। ऐसे शक्ति जैसे ब्रह्मा जी की शक्ति है, सारे सृष्टि का निर्माण करना कितना कठिन कार्य है। एक छोटे से कारखाने का निर्माण करना आप जानते हैं कितना कठिन है, उसको चलाना कितना कठिन है आप जानते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सारे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं और उसको चलाते हैं। कितनी अद्भुत शक्ति है, 84 लाख योनियों को उन्होंने उत्पन्न किया है। हालांकि सब श्री कृष्ण की शक्ति के माध्यम से के कारण से हुआ है, ब्रह्मा जी तो केवल निमित्त है, लेकिन फिर भी एक अद्भुत शक्ति की आवश्यकता होती है। तो ब्रह्मा जी सृष्टि का काम संभालते हैं, रुद्रदेव जो है नाश करने का काम संभालते हैं, इंद्रदेव वर्षा का काम संभालते हैं, चंद्रदेव प्रकाश का कार्य संभालते हैं, अग्निदेव जो है वो अग्नि का कार्य संभालते हैं, सूर्यदेव उष्णता का कार्य संभालते हैं, ब्रह्मांड के सरकार में अलग अलग अफसर के बराबर हैं। जैसे सरकार में यहां पर भी ऑफिसर होते हैं, मंत्री होते हैं, उसी प्रकार से ये जो देवता लोग होते हैं ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, ये इनके ऑफिसर हैं भगवान के, इसलिए उनको सम्मान देना चाहिए। अगर हम कृष्ण भक्त हैं तो हम ये नहीं सोच सकते कि हम तो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, हम देवताओं को क्यों मानेंगे, हम देवताओं की ओर देखेंगे नहीं, उनका तिरस्कार करेंगे। नहीं, देवताओं की उपासना नहीं करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन देवताओं का सम्मान करना चाहिए, उनका तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी उपासना करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर बड़े से बड़ा आदमी भी रास्ते में जा रहा हो और अगर रास्ते में कोई हवलदार ने भी हाथ उठाया और कहा रोको, सारा ट्रैफिक रुक जाता है, उस बड़े आदमी को भी रुक जाना पड़ता है। भले उसके पास 10 करोड़ रुपए हो, 20 करोड़ रुपए वाला आदमी हो, लेकिन जब हवलदार ने हाथ उठाया तो उस 20 करोड़ आदमी को वाले को रोकना पड़ता है। भले हवलदार को 500, 1000, 2000 रुपए मिलते होंगे और दूसरे आदमी के पास करोड़ों रुपए होते हैं, लेकिन फिर भी करोड़ों रुपए आदमी को वाले आदमी को 2000, 1000 रुपए वाले आदमी के सामने रुकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जो हवलदार है सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो सरकार, हमें सोचना चाहिए कि सरकारी हाथ आगे कर रही है, सरकारी हमको रोक रही है, और अगर हम उसके आदेश का उल्लंघन करेंगे, आदेश को तोड़कर हम आगे चले जाएंगे तो फिर हमें दंड मिलेगा, क्योंकि हमने सरकार के नियम को, सरकार के प्रतिनिधि का तिरस्कार हमने किया है। तो इसी प्रकार से देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए, लेकिन स्पष्ट रूप से हमें जानना चाहिए कि वास्तव में भगवान कौन है। श्री कृष्ण ही एकमात्र परम भगवान है और सारे देवता जो हैं वो उन्हीं के एक दास हैं, उन्हीं के अंश हैं। 10वें अध्याय के एक दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, नमे विदु सुरगण प्रभवम न महर्षय अहम आदिर देवानाम महर्षिणाम सर्वशः। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, हे जान लो, ये जान लो अच्छी तरह से कि मैं सारे देवताओं का और महान ऋषियों का उगम स्थान हूं, मैं सबको जानता हूं लेकिन कोई मुझे नहीं जानता है। अहम आदर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः, कि मैं सारे बड़े बड़े ऋषियों का, बड़े बड़े देवताओं का उगम स्थान मैं हूं, मैं देवताओं को जानता हूं, सबको जानता हूं लेकिन कोई भी मुझे नहीं जानता। देवतागण भी भगवान को पहचान नहीं सकते। तो देखिए, जब देवतागण अच्छी तरह से भगवान को नहीं पहचान सकते तो कृष्ण का स्थान क्या होगा, भगवान कितने महान होंगे। जो देवताओं की शक्ति है इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, और जो कृष्ण की शक्ति है वो देवता कल्पना नहीं कर सकते कि कृष्ण की शक्ति कितनी महान है, कृष्ण का पद कितना ऊंचा है। लेकिन फिर भी हालांकि देवतागण इतने शक्तिशाली हैं, उनका इतना ऊंचा पद है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के सामने देवतागण भी सर झुकाते हैं। हम वृंदावन में देखते हैं कि जब वृंदावन के निवासी वो संगीत करते थे, गीत गाते थे, तो कृष्ण भगवान उनके सामने नृत्य करते थे और गोपियां ताली में जाती थी और कृष्ण भगवान ताल में नृत्य करते थे। गोपियां ताली बंद कर देती थी तो कृष्ण नाचना शुरू कर देते थे। वास्तव में बताया जाता है, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्य, जे जाए चे नाचाए ते ताए चे करे नृत्य, कि एकमात्र कृष्ण भगवान ईश्वर हैं और सब उनके भृत्य हैं, भृत्य मतलब उनके दास हैं, यहां तक कि सारे अवतार भी उन्हीं की सेवा करते हैं, महाविष्णु उनकी सेवा करते हैं, खुद बलराम उनकी सेवा करते हैं, बलराम उनके पांचों रसों में सेवा करते हैं। बलराम जी ने अपने आप का विस्तार किया है, उनकी बांसुरी बन गए हैं बलराम जी, उनके आभूषण बन गए हैं, उनके शैया बन जाते हैं, उनके कपड़े बन जाते हैं, सारा गोलोक वृंदावन जो है ये बलराम का विस्तारित रूप है। ये सब कृष्ण की सेवा के लिए करते हैं बलराम। तो जब बलराम करते हैं तो बलराम से जो अवतार निकल जो उत्पन्न होते हैं, जैसे वसुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध, नारायण, विष्णु अवतार, सभी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारु व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भागवत में बताया जाता है कि श्री कृष्ण ही एकमात्र स्वयं भगवान हैं और अन्य जो भी अवतार हैं वो श्री कृष्ण के अंश हैं या अंश के अंश माने जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान माने जाते हैं। और जब भी यहाँ देवताओं को कष्ट होता है असुरों के द्वारा, तो उस समय श्री कृष्ण यहाँ अवतार लेते हैं उनके भक्तों को बचाने के लिए। तो श्री कृष्ण मात्र ईश्वर हैं और अन्य जो भी हैं सब उनके कहने पे नाचते हैं। जे जाचे नाचा तो ताचे करो नृत्य। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जैसे कृष्ण दूसरों को नचाते हैं, दूसरों को नाचना पड़ता है, है ना? लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वो कृष्ण को नचाते हैं, ताली मारते हैं और वो संगीत गीत गाते हैं तो कृष्ण नाचने लगते हैं। देवतागण ऐसा नहीं कर सकते। देवतागण नाचते हैं कृष्ण के कहने पर। जब कृष्ण कहते हैं कि ऐसे करो, करना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं वैसा करो, करना पड़ता है। और कभी कभी जब देवतागण भूल जाते हैं तो उस समय कृष्ण थोड़े क्रोध दिखा देते हैं, थोड़ा सा उनका लेश मात्र क्रोध दिखा देते हैं, उन्हें कण मात्र शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और उस समय देवतागण जो है उनके होश ठिकाने आ जाते हैं और सोचते हैं कि अरे रे रे, हमने क्या कर दिया। आप तो गोवर्धन लीला अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार से इंद्र भ्रम में आ चुके थे और इंद्र ने सोचा कि मैं ही प्रभु हूं, ये कृष्ण कौन है, और किस प्रकार से इंद्र के होश ठिकाने आ गए बाद में। तो ब्रह्मा जी की कथा भी जानते हैं, किस प्रकार से ब्रह्मा जी मोहित हो गए और ब्रह्म में पढ़कर सोचने लगे कि ये तो साधारण बालक है, ये कहां का भगवान होगा, और भगवान ने किस प्रकार से उनको अपने योग शक्ति के द्वारा, अपने चतुराई के द्वारा उनको अच्छा सबक सिखाया। तो ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है, इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, ये दोनों आकर भगवान श्री कृष्ण के सामने सर झुकाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और उनके सामने सुंदर सुंदर स्तुतियां और स्तोत्र अर्पण करते हैं। तो कृष्ण का स्थान क्या है हमें समझना चाहिए, क्योंकि देवता गण जो है इतने शुद्ध भक्त नहीं होते हैं। देवता गण जो होते हैं ज्यादातर वो सकाम भक्त होते हैं, खुद सकाम भक्त हैं वो कृष्ण के, तो हमें कैसे शुद्ध भक्ति दे सकते हैं? शुद्ध भक्त ही हमको शुद्ध भक्ति दे सकता है। अगर मेरे पास 100 रुपया है तो मैं आपको 100 रुपया दे सकता हूँ, नहीं है वैसे, लेकिन अगर हो भी तो मैं नहीं आपको दे सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास नहीं है 100 रुपया तो मैं आपको कैसे दे दूं 100 रुपया। तो देवताओं के पास भी कृष्ण भक्ति नहीं है, शुद्ध कृष्ण भक्ति नहीं है, तो वो हमें कैसे देंगे कृष्ण भक्ति? तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं देवताओं के शरण में जाकर मैं संसार को पार कर लूंगा, वो मूर्ख व्यक्ति है, कृष्ण भगवान बताते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कुत्ते के दुम को पकड़कर सागर पार करना चाहता है, अगर कुत्ता तैर रहा होता है सागर में और हम सोचते हैं कि हम बंबई से दुबई चले जाएंगे, वहां अच्छी नौकरी मिल जाएगी, हवाई जहाज का टिकट भी बच जाएगा, तो कुत्ते का दुम पकड़ के हम तैरते रहेंगे, क्या हम तैर पाएंगे? कभी नहीं। ये मूर्ख का सपना है। उसी तरह से जो सोचता है कि देवी देवताओं के शरण में जाकर मैं ये संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाऊंगा, ये भी एक मूर्ख का स्वप्न है, कभी संभव नहीं हो सकता है ये। इसलिए हमें केवल कृष्ण के शरण में ही जाना है। जब हम कृष्ण के शरण में जाते हैं सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। कभी कभी लोग घबराते हैं, हम 20 साल से 30 साल से दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, शांता दुर्गा की पूजा करते हैं और फिर इनकी पूजा करते हैं, जय संतोषी मां की पूजा करते हैं, तो उनका क्या होगा, वो क्रोधित हो जाएंगे हमारे ऊपर, कुछ श्राप देंगे तो क्या होगा? लेकिन ऐसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण भगवान बताते हैं कि मैं रक्षा करने वाला हूँ। देव ऋषि भूता त्रिणाम पितृणाम नायन किं करो ऋणी चराजन सर्वात्मना है यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहित्य कर्तम। भगवान बताते हैं, ये श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि जो व्यक्ति सर्वात्मना शरणम शरण्यम पूरी तरह से अपने मन से हृदय से तन से भगवान के शरण में गया है, गतो मुकुंदम परिहित्य कर्तम, अन्य सारे कार्यों को त्याग कर मुकुंद अर्थात श्री कृष्ण के शरण में जो व्यक्ति गया है, तो क्या होगा, उसके जो भी ऋण है इस संसार में सब खत्म हो जाते हैं। नायम ऋणी चराजन न किंकरो नायम ऋणी चराजन, ना तो वो व्यक्ति किसी का किंकर है अर्थात दास है, और ना वो किसी के प्रति ऋणी है, उसके सारे ऋण चुक जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं तो आप बोलेंगे कि हम कृष्ण भक्त बन गए, भागवत क्लास हमने आज सुना गीता क्लास में कि जो कृष्ण बन जाता है सारे ऋण से मुक्त हो जाता है, तो भी आपके पैसे लौटाने की आवश्यकता हमें नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। तो कहने की बात यह है कि अन्य किसी भी देवी देवता के पुत्रों की इत्यादि उपासना करने की आवश्यकता कृष्ण भक्त को नहीं होती है, ये बहुत जरूरी बात है। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया जाता है, यथा तरो मूल निषेच ने नृपंति तत्खंड भुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणाम सर्व तथैव सर्वारणम अच्युतेज्या। यथा तरोर मूल निषेचनेन, जैसे तरोर तरु मतलब वृक्ष, वृक्ष के मूल के ऊपर निषेचनेन जब हम पानी डालते हैं तो क्या होता है, स्कंद उपशाखा, सारे स्कंदों में जो जो स्कंद है और उपशाखाएं हैं उनमें सब पानी खुद ब खुद चले जाता है। उसी प्रकार से जब हम प्राणोपहाराज तो यथेन्द्रियाणाम, जब हम पेट में भोजन डालते हैं तो सारी इंद्रियां हमारे बलशाली हो जाती हैं, अलग से इंद्रियों को खिलाना पिलाना नहीं पड़ता है। तो उसी प्रकार से भागवत में बताया जाता है कि जिस प्रकार से वृक्ष के मूल में पानी डालने से सारे शाखाओं को वृक्ष पानी चले जाता है, जिस प्रकार से पेट में भोजन डालने से सारी इंद्रियां तृप्त हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से तथैव सर्वारणम अच्युतेज्या, जब हम देवताओं की पूजा करते हैं तो क्या होता है, जब हम कृष्ण की पूजा करते हैं अच्युत इज्या, तब सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सारे देवता संतुष्ट हो जाते हैं, देवता क्रोधित नहीं हो जाते हैं। और कहीं भूल से कोई देवता क्रोधित हो भी गए तो क्या होता है, जैसे गोवर्धन लीला में क्या हुआ, कृष्ण ने रक्षा किया ना, अगर कहीं गलती से ऐसे हो भी गया तो भक्त को चिंता नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने कहा है मैं रक्षा करूंगा, कौन तो यह प्रति जानी ही न मैं भक्त प्रणश्यति, भगवान ने कह दिया साफ साफ। तो इसीलिए जो अच्युत अर्थात श्री कृष्ण का भक्त है उसे और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, केवल कृष्ण की सेवा करना है उसे, बस उसका एक ही काम है, और ऐसा करने से वो देवी देवताओं को प्रसन्न कर देगा और देवी देवताओं की अलग से उपासना करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए कृष्ण की सेवा करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें भक्तों के संग में आना चाहिए, ऐसे गीता भागवत क्लास में आना चाहिए, और क्लास में सोना नहीं चाहिए, जगे हुए रहना चाहिए, सुनना चाहिए, और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप और कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हालांकि अभी बहुत गर्मी है, ऊपर से पंखा चल रहा है, ठंडी हवा है, शांत वातावरण है, तो सोने के लिए भी अनुकूल वातावरण है, लेकिन ऐसे कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी। कृष्ण भक्ति के लिए चाहिए थोड़ी तपस्या, हम सबको तपस्या करना होगा, जब सोना चाहिए हम नहीं सोते हैं, रात रात को जगे रहते हैं, और जब नहीं सोना चाहिए तभी सो जाते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण भक्ति नहीं होगी। इसलिए कृष्ण भक्ति करना है तो सत्संग में ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, हमें भक्तों का संग नम्रता से करना चाहिए, प्रेम का संबंध सब भक्तों के साथ में रखना चाहिए, जाप 16 माला रोज करना चाहिए कम से कम, और प्रभुपाद के सुंदर ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, और ऐसा करने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा और कृष्ण भगवान खुद हमें उनके धाम में लेने के लिए आ जाएंगे और भौतिक संसार को आसानी से हम पार कर पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब कोई व्यक्ति देवताओं की पूजा छोड़ देता है और जीवन में संकट आ जाते हैं तो अन्य लोग मतलब जो कृष्ण भक्त नहीं है, वो बोलते हैं कि देवताओं की पूजा छोड़ दी इसलिए सब कष्ट आने लगे, तो फिर से देवताओं की पूजा करो तो कष्ट दूर चले जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं, सही है कि ये गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। जब कोई कृष्ण के शरण में जाते हैं तो कृष्ण उनका वैयक्तिक रूप से देखभाल करते हैं, खुद स्वयं देखभाल करते हैं। भगवान बताते हैं ना यहीं पर, जैसे हमने श्लोक में बताया, अनन्या चिंतयन्तु माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं खुद मेरे भक्तों को देखूंगा, देखभाल करूंगा, लेकिन क्या होना चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए कि जब हम कृष्ण के भक्त शरण में जाते हैं तो कृष्ण हमारा देखभाल करने वाले हैं, ये श्रद्धा हमारी होनी चाहिए। और कष्ट आते हैं तो कृष्ण की कृपा से आ रहे हैं, जल्दी से जल्दी आपको गोलोक वृंदावन ले जाने के लिए। पूर्व हजारों करोड़ों जन्मों के कर्म जो हैं, पाप हैं, वो जल्दी से जल्दी मिटाने के लिए। देवताओं की पूजा छोड़ दी है इसलिए कष्ट आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कृष्ण की कृपा मिली है इसलिए कष्ट आते हैं, अर्थात जल्दी से जल्दी संसार का समय हमारा खत्म होते जाता है, जो हमारे इतने जन्मों के पाप है सब खत्म भूल जाते हैं। तो भगवान की कृपा समझकर स्वीकार करना चाहिए, ये होती है भक्त की भावना। इसलिए हमें चाहिए श्रद्धा। देवी जैसे हमने देखा, उदाहरण से देखा, आप वृक्ष के जड़ में पानी डालिए, सब जगह पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार से कृष्ण की पूजा कीजिए, सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, ये शास्त्रों की वाणी है, तो इसमें हमें विश्वास होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि नहीं नहीं, जब से हमने एक मूल में पानी डालना आरंभ किया है तब से अब कुछ गड़बड़ हो रहा है, नहीं, मूल में डालते रहना चाहिए। गड़बड़ क्यों हो रहा है? क्योंकि मूल में पहले डालने के पहले आप जो भी कर रहे थे उसका फल अभी मिल रहा है। जो पहले आपने नहीं डाला था ना पानी, मूल में इधर उधर डाला था पानी, तो वो फल पक गए हैं, वो फल मिल रहे हैं अभी। लेकिन अभी जो आप धीरे धीरे मूल में पानी डालना शुरू करेंगे तो सारे वृक्ष भर में पानी चले जाएगा और फिर मीठे मीठे फल आएंगे बाद में, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। अभी हमने मूल में पानी डालना शुरू किया और अचानक सुंदर सुंदर फल आएंगे, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं होगा। तो अभी जो हम लोग थोड़े खट्टे और थोड़े कड़वे फल मिल रहे हैं वो क्यों? क्योंकि इतने सालों तक, इतने जन्मों तक हमने जड़ में पानी नहीं डाला था। जब अभी डाल रहे हैं तो धीरे धीरे भविष्य में फल मीठे हो जाएंगे। तो ये शास्त्रों में कृष्ण की वाणी में श्रद्धा रखने की बात है, ये श्रद्धा हमें रखनी चाहिए। संसार के लोगों की बात हमें नहीं सुननी चाहिए। हमारे सामने दो बातें हैं, संसार के लोगों की बातों में विश्वास करें या हम श्री कृष्ण और शास्त्रों की बातों में विश्वास करें, हमें चयन करना है कौन हमें चाहिए, संसार चाहिए या कृष्ण और वैष्णव और शास्त्र चाहिए। अगर कृष्ण वैष्णव और शास्त्र चाहिए तो हमें श्रद्धा रखना चाहिए कि यही सही मार्ग है। और जो भी हम अभी भुगत रहे हैं इसलिए भुगत रहे हैं कि हमने पहले जो अभी करना चाहिए था वो पहले नहीं किया था। ठीक है, इसलिए हमें कृष्ण भक्ति को कभी भी किसी भी अवस्था में छोड़ना नहीं चाहिए। संकट आते हैं तो कृष्ण भगवान हमें सिग्नल देते हैं। क्या सिग्नल दे रहे हैं? लाल बत्ती नहीं दिखा रहे हैं, हरी बत्ती दिखा रहे हैं, और भी तेजी से चलो और जल्दी और तीव्रता से मेरी भक्ति करो। जब कष्ट हमारे जीवन में आते हैं तो ज्यादा उनके शरण में जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि उनके शरण से दूर जाना चाहिए। जब ज्यादा बीमारी बढ़ जाती है तब ज्यादा डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीमारी बढ़ जाती है तो सोचते हैं कि अभी तो डॉक्टर की आवश्यकता ही नहीं है। तो उसी प्रकार से जब दुख जीवन में ज्यादा आते हैं तो ज्यादा कृष्ण का नाम लेना चाहिए, ज्यादा कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन करना चाहिए, ज्यादा प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमारे ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, प्रश्न है कि अगर हमें जीवन में इतना कष्ट नहीं मिल रहा हो तो हमें क्या सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा हमें नहीं मिल रही है, या क्या हम भक्ति में उतनी प्रगति नहीं कर रहे हैं? जब हमने कहा कि जब भक्त को कष्ट मिलता है तो भगवान की कृपा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ज्यादा कष्ट नहीं मिल रहा है इसलिए जानबूझ के कष्ट अपने आप पर ले लें ताकि हम समझें कि भगवान की कृपा आ रही है। ऐसे नहीं करना है। जो बिन बुलाए हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, कष्टों को तो कोई निमंत्रण नहीं देता है ना, निमंत्रण पत्र देते हैं आप, हे प्रिय कष्ट आओ मेरे जीवन में सदा सुबह शाम आना, हम स्वागत करेंगे। कभी तो बुलाते नहीं है, दूर रखने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार दुख सुख भौतिक संसार में आते हैं जाते हैं हमारे जीवन में, उनको सहन करना चाहिए। मात्रा स्पर्शा सुकौते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्याह तांसितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, क्या करना चाहिए? इस संसार के सुख दुख जो है, कष्ट इत्यादि है, ये गर्मी और जाड़े के मौसम के बराबर है, आते हैं चले जाते हैं, इसलिए इनको सहन करने को सीखो। हम यही करना चाहिए, हमें जाकर दुखों को निमंत्रण नहीं देना चाहिए, कोई ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दुख और बढ़ जाएं। लेकिन बिन बुलाए जो दुख आ रहे हैं, अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो वो भी ठीक है, तो अच्छा है, हम और ज्यादा भक्ति कर सकते हैं। हमारा मन तो कम से कम शांत है ताकि हम भक्ति कर सकते हैं। तो हर अवस्था को भक्त भगवान की कृपा मानता है। अगर कष्ट आता है तो वो भी भगवान की कृपा मानता है, कष्ट से बच जाता है या कष्ट नहीं आता है तो भी भगवान की कृपा मान लेता है। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, देखो भगवान की कृपा है, बहुत जन्मों के कर्म मिट गए, वास्तव में इसे मर जाना चाहिए था लेकिन भगवान की कृपा से बच गया, और एक्सीडेंट से बच गए, देखो भगवान की कृपा थी बच गया। तो चाहे कष्ट आए या न आए, भक्त हर एक घटना उसके जीवन में जो भी होता है उसे भगवान की कृपा मानकर ही चलता है। और इसलिए हमें तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए और प्रगति धीरे धीरे होती रहेगी, ऑटोमेटिक खुद ब खुद प्रगति होती रहेगी। हमें अपना कार्य करना है, कृष्ण अपना कार्य करेंगे। अपना कार्य जाप करना, कीर्तन करना, भक्तों से झगड़ा नहीं करना, भक्तों से प्रेम से रहना, ग्रंथों का अध्ययन करना, श्रवण कीर्तन करना, ये सब हमें करना चाहिए, कृष्ण अपना काम करेंगे। अपने जगह में कृष्ण बैठे हैं हृदय में, तो हृदय को साफ करना, स्वच्छ करना कृष्ण का काम है। धीरे धीरे श्री कृष्ण साफ करेंगे हमारा हृदय और फिर कृष्ण भक्ति प्रदान कर देंगे। ठीक है, कृष्ण भक्तों को ही आता है कि अभक्तों को भी आता है? आप तो जवाब जानते हैं इसका, दोनों को आता है, ये तो कोई रहस्य की बात नहीं है। सारा संसार दुख का सागर है, सही बात है। भगवान क्या बताते हैं? अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजत समाम। ये संसार क्या है? अनित्य असुखम, दुख का सागर है ये, दुखालय अशाश्वतम। ये संसार दुखों का सागर है, पदम पदम यद विपदाम नतेषाम, हर पद पर हर कदम पे यहाँ पे कष्ट है, संकट है। चाहे कोई कृष्ण का भक्त हो या न हो, लेकिन कृष्ण की शरण में जाने से क्या होता है, इसका जो है नित्य उपाय निकल आता है। समाश्रित ये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिम वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम नतेषाम। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि जब कोई व्यक्ति कृष्ण के शरण में जाता है, मुरारी श्री कृष्ण के शरण में जाता है, तो उस समय भवम बुधिम ये सारे भौतिक सागर जो है जिसको पार करना असंभव होता है, कृष्ण भक्त के लिए कैसे हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। सागर कितना बड़ा बन जाता है उसके लिए, जैसे गाय के बछड़े के पैरों के तले जितना पानी आ सकता है, बरसात का पानी, उतना बड़ा सागर हो जाता है। इतना विशाल सागर इतना छोटा हो जाता है। बरसात के मौसम में आप सड़क पे जाते हैं तो छोटे छोटे पानी के एक बहुत पड़े रहते हैं, आसानी से पार करके चले जाते हैं। इसी प्रकार से कृष्ण भक्त के लिए इन सब चीजों को पार करना बड़ा कठिन है। और ये संसार कैसा है, पदम पदम यद विपदाम नतेषाम, हर पद हर कदम पे यहाँ पे कष्ट है। अगले क्षण पे क्या होने वाला है हम कह नहीं सकते, लेकिन एक चीज हम कह सकते हैं, जीवन में हमेशा हमारे संकट आएंगे, कष्ट आएंगे। एक संकट गया कि दूसरा खड़ा दरवाजे पर, दूसरा गया कि तीसरा आया, तीसरा गया कि चौथा पांचवें सब खुद दोनों इकट्ठे खड़े हैं, वो भी आएंगे। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि एक संकट चला गया तो अभी हम मुक्त हो गए, नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक सब आने वाले हैं। जैसे सागर की लहरें आते रहते हैं आते रहते हैं, उसी प्रकार से जीवन में दुख आते रहेंगे। कृष्ण भक्त क्या सोचता है, लहरों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो अपना काम करता है, तैरता है, भगवान के भक्ति के सागर में तैरते रहता है, अपना काम भक्ति करता है, और फिर कृष्ण उसको आसानी से पार ले जाते हैं ये भव सागर के। ठीक है।